आपने जैसा किया वैसा मैं कर रहा हूं। बोले यदि उसको इतनी दूर से दिए की गर्मी मिल गई तालाब में, तो फिर मेरी खिचड़ी तो बहुत पास है। बोले तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? बोले आपके नियम के अनुसार तो मेरी खिचड़ी पकेगी ही पकेगी। अकबर बोलता है कि बस अब चलो वहां पर और उसको बुला लो। बोले कौन है वो? बुला दिया उसको और मुंह मांगा इनाम दे दिया। कारण विपर्यास होता है। कारण विपर्यास यानी किसी चीज का कारण कुछ और होता है और अपन धारणा कुछ और बना लेते हैं और परिणाम क्या निकलता है? कोई विपरीत विपरीत परिणाम निकलता है। तो संसार की सब पर्याय नष्ट होने वाली है। जितनी भी वस्तुएं, जितनी मनोहर मनोहर वस्तुएं हैं, ये तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पिच्छी परिवर्तन होता है साल में, एकदम नई पिच्छी रहती है बिल्कुल फ्रेश, पर चूंकि कई सालों का अनुभव है पता है कि एक साल बाद इसका क्या हाल होने वाला है। क्या होता है कि इसकी कोमलता में अंतर आ जाता है। साल भर बार बार लगाते लगाते इसके पंख जो शुरू में जितनी कोमल होते हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। इसका जो रंग है वो भी कुछ बदल जाता है, धूप और पानी के असर से रंग में भी फर्क पड़ जाता है। जब नई पिच्छी रहती है तब एकदम शाइनिंग रहती है, उसमें एक चमक रहती है और वो देने वाले को भी अच्छा लगता है और फिर बाकी जो दर्शक होते हैं वो भी खूब तालियां बजाते हैं पिच्छी परिवर्तन के दिन। और फिर जो नियम लेकर के पुरानी पिच्छी लेते हैं उनके लिए भी बहुत प्रोत्साहन और काफी जनता का समर्थन प्राप्त होता है। पर नई पिच्छी के प्रति सबका एक अलग आकर्षण होता है। पर अब जो जानकार है वो जानता है कि ये भी चंद दिनों की चमक है, शाश्वत नहीं है। बल्कि इस पिच्छी से और कमंडल से और भी जितने साधु की चर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपने आप में संसार इन अनुप्रेक्षाओं का संदेश देती है। कमंडल भी कितना अद्भुत संदेश देता है, पिच्छी का भी कितना संदेश देती है। तो परिवर्तन क्यों करना पड़ता है? जिस प्रकार पिच्छी बदल दी जाती है उसी प्रकार एक दिन ये देह भी बदल जाएगी, नया शरीर मिल जाएगा। तो पिच्छी बदलते समय जिस प्रकार आकुलता नहीं होती उसी प्रकार मरण काल में भी साधक के अंदर आकुलता नहीं होती। परिवर्तन है, विनाश तो नहीं है, सिर्फ बदल रहा है। हाथ वही रहता है। देखो अभी इस हाथ में ये पिच्छी है, पिछली पिच्छी भी इसी हाथ में थी, उसके पहले वाले भी इसी हाथ में थी। क्या मतलब हुआ? आत्मा वही रहती है, शरीर नए नए आते रहते हैं, पुराने होते हैं छूट जाते हैं, नए आ जाते हैं। नई जब कोई चीज होती है तो फिर एक आकर्षण रहता है, पुराना हो जाने के बाद फिर वो आकर्षण धीरे धीरे घट जाता है। अपना मन नवप्रिय है, नई चीज को पसंद करने वाला, नवीन वस्तु को चाहने वाला है। तो फिर अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते एक अपने मन से पूछना आप कि अब नया क्या बचा यहां पर? सिर्फ एक चीज नई बाकी अपने लिए, वो है मुक्ति। तो अगर नई चीज सचमुच पसंद हो तो फिर मुक्ति को पसंद कर लो, बाकी सारी पुरानी चीजों को छोड़ो। ओम शांति। शब्द के दो अर्थ, घर और रक्षक। तो यहां अशरण का अर्थ कोई रक्षक नहीं है। 23वीं गाथा, तत्थ भवे किं शरणम् जत्थ सुरिंदाण दीस दे विलौ, हरिहर बंभादिया कालेण कवलिया जत्थ। तत्थ भवे, उस संसार में उस संसार में किन शरणम, रक्षक कौन है, मरने से बचाने वाला कौन है। जत जहां सुरिंदाण विलव दिस दे, देवों का इंद्र भी मरण को प्राप्त हो जाता है, यानी जहां पर देवेंद्र भी विलीन हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उस संसार में शरण कौन हो सकता है, मरने से कौन बचा सकता है। जत्थ और कह रहे हैं कि जहां पर हरि हर बंबा दिया कालेण या कवलिया, हरि यानी नव नारायण, हर यानी 11 रुद्र और ब्रह्मादिक, ब्रह्मा यानी आदि तीर्थंकर, ये सब काल में विलीन हो गए, समय बीत गया, ये भी अपना काम करके यहाँ से चले गए। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष इस धरती पर नहीं रहे तो फिर और छोटे मोटे लोगों की क्या बिसात, यानी जब इनको भी कोई मृत्यु से बचा नहीं सका तब फिर सामान्य मनुष्य रूपी कीट कीड़े की क्या कथा। आचार्यों के वचन ही है कि जब इतने बड़े बड़े इंद्र, धर्णेन्द्र और 169 पुण्य पुरुषों की भी रक्षा नहीं हो सकी तो फिर मरण से बचाने वाला इस संसार में कौन हो सकता है। अर्थात जब मृत्यु जीव को ग्रस्ती है तब रक्षक कोई नहीं होता। क्या गाथा है ये, वैसे ही अनित्यानुप्रेक्षा की भी पहली गाथा बिल्कुल, इसमें से अगर आप पूरा ग्रंथ कंठस्थ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुछ गाथा भी कंठस्थ कर लो जो एकदम हृदय स्पर्शी है तो भी बहुत अच्छी बात है। अनित्यानुप्रेक्षा की पहली गाथा देखो कितनी सुंदर है। जम किंचि वि उपन्नम तस्य विनाशो हवेई नियमेण, चौथी गाथा है। जम किंचि वि उपन्नम तस्य विनाशो हवेई नियमेण, परिणाम सरु वेण वि नय किंचि वि साशयम अति, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है, नियम से होता है, पर्याय रूप से कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, टिकने वाली नहीं है। और अशरणानुपेक्षा में ये पहला छंद, पहली गाथा, स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि कहते हैं कि तत्त्व भवे किम शरण, उस संसार में शरण क्या वस्तु है, बचाने वाला कौन है। जत्थ जहां सुरिंदाण विलो दिस दे, देवों के इंद्र का भी मरण दिखाई देता है, इंद्र की भी मृत्यु हो जाती है, कभी इंद्राणी की पहले हो जाती है कभी इंद्र की हो जाती है। वैसे तो कई इंद्राणियां आती है चली जाती है इंद्र के जीवन में, और जो आखिरी इंद्राणी है कभी उसका मरण पहले हो जाए और फिर 6 महीने का भी योग काल भी पड़ जाता है कभी 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 ऐसा है कि इंद्र की आयु अधिक है और इंद्राणी की तो कम होती है, मान लो इंद्र की आयु 6 महीने अधिक है, आखिरी इंद्राणी है उससे उसकी आयु पूर्ण हो गई और 6 महीने तक अब इंद्र की आयु और बाकी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि वहां पर फिर आगे कोई इंद्राणी न मिले उसको, नई इंद्राणी, जैसे शचियां हैं, सौधर्म इंद्र की अपन बात करो तो आखिरी शची के चले जाने के बाद 6 महीने तक कोई दूसरी शची नहीं है, तो वो स्थिति भी बनती है। पर ये नियम है कि सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि होता है और एक भवावतारी होता है। त्रिलोक सार ग्रंथ में एक गाथा है, मूलाचार में भी है, सक्को पहाण महिषी, सक्को पहाण महिषी सलोग वाला या दक्षिण अमरिंदा लोयंती सव्वट्ठा तत् चुवाण निवुदिन जयंती, ये इतने देव वहां से आकर नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, नियम से, बाकी देवों का नियम नहीं है। धरणेन्द्र भी आकर मोक्ष जा सकते हैं यहां से, जैसे विमलनाथ भगवान के जो दूसरे गणधर थे वो धरणेन्द्र पर्याय से आकर मनुष्य बने थे, मंदर उनका नाम था, मेरु बड़े गणधर थे, प्रथम गणधर थे, और मंदर दूसरे गणधर थे, वो धरणेन्द्र की पर्याय से आकर के यहाँ पर गणधर पद को प्राप्त हुए थे। तो शक्र यानी सौधर्म स्वर्ग का इंद्र एक भवावतारी होता है, वहां से आकर के नियम से मोक्षगामी होता है। ये इनके नाम आप ख्याल में रखिए, कितने जीव हैं जो देव पर्याय से नियम पूर्वक मनुष्य में आकर मोक्ष जाते हैं। एक तो शक्र, शक्र कहते हैं सक्को जम्बू दीवम पल्लटदी, संभावना सत्य, 10 प्रकार के सत्यों में एक संभावना सत्य है, उसका कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा लेकिन क्षमता बता रहे हैं कि सौधर्म इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि जम्बू दीप को ऐसे थाली के समान पलट सकता है, उलट सकता है, उल्टेगा नहीं, डरना नहीं, अभी अपन बैठे हैं जम्बू दीप, कोई रिस्क नहीं, खतरा नहीं, क्षमता है उसकी, लेकिन उसको ऐसे भाव ही नहीं होते कि पलट दूं। उसको तो भाव होते हैं कि यहां पर जब भी तीर्थंकर जन्म ले उनके पंच कल्याण करूं, यहाँ के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करूं, उसके भाव इस प्रकार के होते नहीं है कि ऐसी हिंसा करूं। अब यहां अगर किसी आदमी के पास इतनी ताकत आ जाए तो फिर पता नहीं कितना खुरापात मचा दे, वो कषायों की विचित्रता है। तो शक्र सौधर्म इंद्र नियम से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष जाता है। पहाड़ महिषी, उसकी जो पट्ट महादेवी शची है, इंद्राणियां अनेक होती है लेकिन जो शची है पट्ट महादेवी, वो नियम से एक भवावतारी होती है। और स्वर्गों की तीन प्रकार से व्यवस्थाएं बताई है कि उसमें स्वर्गों में, जैसे अभी पिछले दिनों एक चर्चा निकली थी ना कि दो दो विमान रहते हैं, मेरु के उत्तर दिशा में एक, दक्षिण दिशा में एक, ऐसे बहुत विस्तृत रहता है पूरे, उनका विस्तार हरिवंश पुराण में आप पढ़ सकते हैं, शुरू के 8 अध्याय। तो ऐसे दो दो विमान, 8 स्तरों में कह लो, दो 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 ऐसे करते करते कुल 16 विमान होंगे स्वर्ग के, और उनमें दक्षिण दिशा के जितने विमान हैं, उन दक्षिण विमानों से संबंध रखने वाले जो इंद्र होते हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं। 16वें स्वर्ग का इंद्र एक भवावतारी हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन 15वां स्वर्ग जो है दक्षिण स्वर्ग, या 3रा स्वर्ग है सनत कुमार स्वर्ग, वहां का इंद्र नियम से एक भवावतारी होता है। और इसके साथ एक बात और कही, सलोग वाला है, दक्षिण स्वर्ग के इंद्र ही मोक्ष नहीं जाते बल्कि उनके साथ जो लोकपाल रहे हैं स्वर्गों में, जितने लोकपाल हैं 4, वो भी एक भवावतारी होते हैं। लोकपालों के नाम तो प्रसिद्ध है, सोम, वरुण, यम और कुबेर। एक विद्याधरों का राजा हुआ है रत्नोपुर में, जिसका नाम भी इंद्र था, और उसने अपना साम्राज्य इतना विस्तृत किया था कि अर्ध चक्रवर्ती से भी ज्यादा उसका ठाट फैल चुका था, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर उस इंद्र को रावण ने पराजित कर दिया था, और तब उसने दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त किया था। उस इंद्र ने अपने 4 लोकपाल बनाए थे और उनका नाम भी उसने वैश्रवण आदि रख दिया था। और रावण ने जब अपनी माँ कैकसी से पूछा कि ये कौन है जो विमान में उड़ा चला जा रहा है, बड़ा ठाट है इसका, तब फिर उसने बताया कि ये अपने मूल निवास पर कब्जा किए हुए इंद्र के लोकपाल है। और फिर उसको आंसू आ गए, कैकसी को याद आया कि अरे हमारा पुराना जो साम्राज्य था वो सब इसने, इंद्र ने अपने वश में कर लिया। फिर इंद्र की बात सुन करके रावण बोले कि ये इंद्र कौन है, और फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या मेरे से भी ज्यादा ताकत है उसमें। तो ऐसी सब बातें हुई और रावण के पराक्रम की बातों को सुनकर के माँ को लगता था कि ये बहुत विशिष्ट जीव है। फिर अंततः क्या हुआ कि रावण ने उसको परास्त कर दिया, और जब उसको परास्त कर दिया, बंधन में बांध करके जब रावण अपने पास ले आया, तब इंद्र के पिता आए अपने पुत्र के स्नेहवश, वो आ गए छुड़ाने के लिए। तब रावण ने पिता का इतना सत्कार किया, आप पढ़ेंगे पद्म पुराण में तो अजीब सा लगेगा आपको, पुत्र को बांध करके एकदम रख दिया बंधन में और पिता का ऐसा सत्कार किया, मतलब बड़ों का सत्कार करना वहां पर रावण से सीख लो आप। फिर बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक युद्ध नीति के तहत उसको कैप्चर करके लाया हूं, वो तो आपका ही पुत्र है, फिर मुझे कोई उससे बैर नहीं है। और बिल्कुल सम्मान सहित जब उसको बंधन मुक्त किया, तब इंद्र ने विचार किया कि बंधन में रखता तो इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन बांध कर छोड़ने पर मुझे ज्यादा कष्ट हो रहा है। बोले मेरा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल गया, मैं देवों के इंद्र से कम नहीं समझता था अपने आप को, वैसे तो नाम से इंद्र था लेकिन मेरा विस्तार इतना था, 47,000 रानियां। 47,000 रानियां किसको बोलते हैं, आयु भी बहुत लंबी चौड़ी रहती थी उस समय, हजारों साल की तो आयु थी, और क्या नहीं था उसके वैभव में। पर आज मेरे से छोटे विद्याधर ने मुझे परास्त कर दिया, अब तो इस संसार में कोई सार नहीं दिखता। बस ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि भाई इस जंजाल से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक छुटकारा नहीं मिलता, वो धक्के खाकर ही दिमाग ठिकाने आता है। उसको जब वैराग्य हुआ और दीक्षा के लिए निकल पड़ता है, तब फिर रत्नपुर का राज्य वो किसी और को दे देता है। तो रावण ने तो फिर 3 खंड को अपने वश में कर लिया, भरत क्षेत्र के 3 खंड का अधिपति बन गया, त्रिखंडी रावण बोलते थे ना, 3 लोक का स्वामी तो नहीं होता, वो तो 3 खंड का स्वामी था। अब फिर 3 खंड के अर्थ कोई किसी तरह से लगा ले तो बात अलग है, लेकिन उसका वास्तविक तात्पर्य तो यही है कि भरत क्षेत्र के जो 6 खंड है उनमें से 3 खंड का स्वामी था रावण। तो ये सब हरि में आप प्रतिहरि भी ले लो उपलक्षण से, रावण जैसे 3 खंड के स्वामी भी जहां काल कवलित हो गए वहां पर मरने से कौन बचा सकता है। हर बड़े बड़े रुद्र भी जहां मरण को प्राप्त हो गए, जहां ब्रह्मा भी काल कवलित हो गए वहां मरने से बचाने वाला कौन है। अर्थात इस जीव को मरते समय कोई शक्ति बचा नहीं सकती। अब जो एक भवावतारी जीव है उनमें दक्षिण स्वर्ग के इंद्र और उनके लोकपाल 4 सोम यम वरुण कुबेर, और फिर लोकांतिक देव जितने होते हैं, लोकांतिक देव बहुत कम होते हैं, लोकांतिक देव उनकी संख्या लाखों में है, मात्र 5 लाख से भी अल्प है ना, कितने जितने भी हो वो, तो उनकी संख्या आप देख सकते हैं तत्वार्थ वृत्ति में मिल जाएगी। तो इतने अल्प होते हैं लोकांतिक देव, और वहां जाने वाले भी कम होते हैं। और अभी जैसे कई बार जब ये प्रश्न आता है कि लोकांतिक देव कौन बन सकता है, तो उसका एक जवाब सभी लोग देते हैं कि जो मुनि जीवन भर 12 भावनाएं भाते हैं वही लोकांतिक देव के पद को प्राप्त करते हैं। बाल ब्रह्मचारी हो तब तो फिर सोने में सुहागा है। पर शास्त्रों में 2 उल्लेख और मिलते हैं। क्या होता है कि शास्त्रों के पूर्ण उल्लेखों को देखने के बाद ही जवाब देना ज्यादा उचित होता है। अपन अकेले तिलोय पण्डित्य को देखो तो तिलोय पण्डित्य में तो लिखा है कि ऐसे मुनि लोकांतिक पद को प्राप्त होते हैं। अब अपन ये कहां से अर्थ निकाल लेंगे कि ऐसे मुनि ही लोकांतिक पद को प्राप्त होते हैं। भीष्म पितामह ने महाव्रत धारण नहीं किए थे, 28 मूल गुण धारण नहीं किए थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में मरण शैया पर पड़े थे, तब कहीं से पुण्य योग से मुनिराज आ गए और फिर वहां पर उनने संलेखना की और आजीवन ब्रह्मचर्य के प्रभाव से भीष्म पितामह को अगला भव लौकांतिक देवों का प्राप्त हो गया। तो मुनि का नियम तो नहीं रहा। और फिर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जो श्रावक निष्ठापूर्वक नित्य नियम से सिद्ध परमेष्ठी की आराधना करता है, सिद्ध पूजन करता है, वह भी लौकांतिक देव के पद को प्राप्त होता है। इसलिए आप गृहस्थ के लौकांतिक देव बनने का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे दो उल्लेख मिलते हैं अपने को। ये आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने कहा है और फिर ये आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है। सिद्ध पूजा वाली बात गुणभद्र स्वामी कहते हैं और फिर वो बाल ब्रह्मचारी रहने वाली बात, भीष्म पितामह वाली बात, वो शुभचंद्र स्वामी ने कहा। तो इस प्रकार ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। तो वो लौकांतिक देव भी अगले भव में नियम से मोक्षगामी होते हैं। ये विशेषता है कि लौकांतिक देवों के यहां पर देवियां नहीं होती। यद्यपि पांचवें स्वर्ग में देवियां तो रहती हैं, लेकिन लौकांतिक देवों की कोई देवी नहीं होती और उनको वहां के देवलोक ब्रह्मर्षि के रूप में मानते। ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले लेकिन ऋषि के समान, ऋषि के समान यानी घर गृहस्थी से रहित, देवी देवियों से रहित। कहां पर? आलय में, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। हाँ, वो जहां पर भी जो स्थान होगा उनका। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। तो वो जो क्षेत्र है उनका, लोकांतिक देवों का जो विशिष्ट आवास है उनके, वहां पर लोकांतिक देव ऐसा यहां से भाव भाग करके जाते हैं, ऐसा पुण्य कमा करके जाते हैं कि उनको उसमें इंद्रिय सुखों में उलझने की, वहां पर देव गति में भी कोई आवश्यकता नहीं होती और फिर वहां पर वो देवियों से रहित होते हैं। ब्रह्म स्वर्ग की वैसे तो आयु है 10 सागर, लेकिन लौकांतिक देवों की आयु कम होती है, 8 सागर होती है। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरो पमाणि सर्वेशाम। तत्वार्थ सूत्र आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? कभी कोई ऐसा विशेष त्योहार आता हो कभी साल में 2-5 बार, तत्वार्थ का भी पाठ करना चाहिए अपने। पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे कि 3 पाठ तो जैनियों को करने ही चाहिए, तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र और जिन सहस्त्र नाम। सहस्त्र नाम नहीं सुना आपने? स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये। इंद्र ने आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति करी थी वो जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है। ये 3 पाठ तो होने चाहिए कंठस्थ। खैर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी जब तक जीवन है तब तक कुछ किया जा सकता है, फिर तो ठीक है। लेकिन देवियां हो तब तो उनके मधुर शब्द सुन करके, उनके आभूषणों की रुंझुन ध्वनि सुन करके, इसका उल्लेख है ना कि इस निमित्त से शब्द प्रविचार होता है। अपनी देवियों के स्वर को, उनके संगीत को, उनके आभूषणों की झनकार को सुन करके उनको एक तृप्ति मिलती है, तो वो चीज़ वहां देवियां ही नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था नहीं बनती। अब ये अगली गाथा भी मजेदार है। वैसे एक सर्वार्थ सिद्धि के देव और लिख लेना, वो भी एक भवावतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान के, देवों का अंतिम विमान सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का भी नाम है जो अपन ले रहे हैं, दोपहर में चलने वाला है उसका स्वाध्याय, सर्वार्थ सिद्धि। सुकुमाल स्वामी वहां पर, सकल कीर्ति आचार्य महाराज के ग्रंथानुसार सुकुमाल स्वामी का नाम तो आपको मालूम है ना, वो अभी सर्वार्थ सिद्धि विमान में। धन कीर्ति मुनि भी, धन कीर्ति मुनि कौन थे, जो उस जन्म में मछुआरे थे, पहली मछली छोड़ने का नियम लिया था, आपने सुनी है कथा, मृगसेन धीवर उनका जीव धन कीर्ति मुनि की पर्याय से तपश्चरण करके रत्नत्रय धारक होकर सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार एक धन्य कुमार मुनि हुए हैं, वो भी सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। हर तीर्थंकर के काल में 10 महामुनि उपसर्ग विजय प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, और 10 ऐसे मुनि होते हैं जो उपसर्गों को जीतकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि तो एक आखिरी अनुत्तर विमान है, और 4 अनुत्तर विमान और, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इन विमानों में जाने वाले महामुनि उपसर्ग विजेता, उनमें सुकुमाल स्वामी भी हुए हैं, और ऐसे और भी मुनिराज होते हैं। 10-10 होते हैं हर केवली तीर्थंकर भगवान के समय, तो ऐसे 224 मुनि 24 तीर्थंकरों के समय अनुत्तर विमानों में जाते हैं, और 224 मुनि घोर उपसर्ग विजय प्राप्त करके। अब जैसे नेमिनाथ भगवान के समय के 10 मुनियों में से 5 नाम तो अपन जानते ही हैं, कौन से, 3 पांडव, 2 पांडव तो नहीं, मोक्ष प्राप्त करने वालों की बात है, अनुत्तर विमानों में जाने वाले 2 पांडव, नकुल, सहदेव मुनि, और फिर मोक्ष जाने वाले शत्रुंजय गिरी से मोक्ष जाने वाले युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये मुनि वहां से मोक्षगामी हो गए घोर उपसर्ग को जीत कर। कुर्यवर नाम के दुर्योधन के भांजे ने जो उपसर्ग किया था, लोहे के अग्नि तप्त आभूषण पहनाकर उनको जो कष्ट देना का प्रयास किया था, उस उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके वो 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। तो मोक्षगामी 10 मुनियों में से 3 तो ये पांडव थे, और एक धन्य कुमार नाम के मुनि हुए हैं जिन्होंने जब से दीक्षा ली थी तब से 9 महीने तक लगातार अंतराय को झेला था, एक भी आहार नहीं हुआ उनका पूरा, 9 महीने तक उनको निरंतर अंतराय हुए थे, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने अंतराय कर्म का ऐसा निकाचित बंद बांधा था, वो बहुत प्रचंड शासक थे पूर्व जन्म में, और उनके यहाँ जो बैल काम करते थे उन बैलों का भी दिन भर मुंह बांध करके रखते थे, मुंह बंधे रहते ना बैल के, आपने देखे भी होंगे बड़द के, तो वो घास कुछ भी नहीं खा सकता, हाँ वो भोजन नहीं कर सकता, और उनके यहाँ पर नौकरानियों को इतना कठोर आदेश था कि जब तक काम चालू है तब तक बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे बोले। तो उस तीव्र कर्म बंद के कारण जब इस पर्याय में धन्य कुमार राजा बनते हैं, फिर दीक्षा लेकर धन्य कुमार मुनि बनते हैं, तो 9 महीने तक एक भी आहार उनका परिपूर्ण नहीं होता, हमेशा अंतराय होते थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के पहले की बात है, और जब वो एक दिन कायोत्सर्ग में खड़े थे वृक्ष के नीचे, तब संयोग की बात सप्तव्यसन चरित्र में ये कथा आती है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो शिकार का व्यसनी था वहां से निकला, 2 चक्रवर्ती नरकगामी थे, एक की कथा आप सुन चुके हैं शुभम चक्रवर्ती की, और ये दूसरे ब्रह्मदत्त, ये जब वहां से निकला तो ऐसे देखा उसने पेड़ के नीचे मुनिराज खड़े हैं, कोई विनय का भाव तो आया नहीं उसके अंदर, आगे बढ़ गया, घोड़े पर सवार था, और जंगल में दिन भर भ्रमण करता रहा, एक भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। लौटते समय फिर मुनिराज को देखता है, मन में विचार करता है कि सवेरे सवेरे इसका मुंह देखने के कारण आज मुझे शिकार नहीं मिला। कारण विपर्यास। और फिर अपने तरकश में जितने बाण थे वो उनके ऊपर चला देता है और निरपराध मुनि उस भयंकर उपसर्ग को, मतलब बाण कई तो ऐसे हाथ के दो हड्डियों के बीच से पार निकल गए, उस तरफ खून की धाराएं बह रही थी, पूरा शरीर लहूलुहान। जब मच्छरों का परीक्षा आता है तब धन्य कुमार मुनि का स्मरण करने पर काफी अंतर्बल प्राप्त होता है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मच्छरों का बहुत उपद्रव होता है, धन्य कुमार मुनि का स्मरण करो कि एक मच्छर अपन नहीं सह पा रहे, उन्होंने इतने बाण, सैकड़ों बाण कैसे सह होंगे, पूरा शरीर छलनी कर डाला उसने। आयु अंतर मुहूर्त थी और उसी समय उन मुनिराज ने अपने मन पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त किया, ऐसा भाव संयम, ऐसा उपेक्षा संयम उनने धारण किया, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गया, निर्विकल्प समाधि में चले गए और शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने